मुक्ति का स्वप्न कृष्ण मोहन। ज्ञान और कर्म के साथ साथ परंपरा और आधुनिकता, अतीत और वर्तमान तथा आंतरिक और बाह्य के द्वंद्व ही मुक्तिबोध की कविताओं की मूलभूत संरचना में निहित हैं। ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि में इतिहास के रंगमंच पर चलने वाले इस नाटक में इन तत्वों की परस्पर अंतःक्रिया को न समझ पाने के कारण कई बार इन कविताओं को समझने में बाधा पड़ती है। अंधेरे में के आरंभिक अंशों में ही कविता के उपरोक्त तीनों मूलभूत द्वंद्व सामने आ जाते हैं। कविता में आगे उनका विकास होता है। कविता का नायक मैं निर्विवाद रूप से एक मध्यवर्गीय बौद्धिक व्यक्ति है। कविता का दूसरा चरित्र एक भव्य और रहस्यमय व्यक्ति आकृति है, जो गुफा से लेकर जन आंदोलन तक में दिखाई पड़ती है। नामवर सिंह ने उसे काव्य नायक की खोई हुई अस्मिता कहा है, जिसकी तलाश में भटकता है। काव्य नायक की इस व्यक्ति आकृति के साथ क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से कविता का विकास होता है और अंत तक दोनों का द्वंद्वात्मक संबंध ही कविता की दिशा को निर्धारित करता है। इसलिए इस दूसरे चरित्र की वास्तविक भूमिका का निरूपण कविता को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है। कविता की आरंभिक पंक्तियाँ देखें। जिंदगी की कमरों में अंधेरे लगातार है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु अरहा घूम तिलस्मी को में गिरफ्तार कोई एक भीत पार आती हुई पास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता अनिवार कोई एक। मुक्तिबोध की कविताओं में रात जैसे किसी कारण की अनुपस्थिति में अंधेरे का प्रयोग प्रायः बाह्य के अभ्यंतरीकृत रूप के लिए हुआ है। उनकी कविता में अंधेरे की व्यापक भूमिका इसलिए है। पहली पंक्ति में जिंदगी के बाद आया हुआ अवकाश इसी आंतरिकता का सूचक है। अंधेरा ही नहीं, कमरे और गुफाएं तथा भीत भी अंतर्मन के विभिन्न कोनों को इंगित करने के लिए प्रायः मुक्तिबोध की कविताओं में आती है। जैसा कि गुथे तुमसे विधे तुमसे कविता में अंतर गुहाओं के मुंह खोल के चिल्लाने तथा दिमागी गुहांधकार का औरांग उटांग कविता में मस्तिष्क के भीतर एक मस्तिष्क, उसके भी अंदर एक और कक्ष, कक्ष के भीतर एक गुप्त प्रकोष्ठ और कोठे के सामने गुहांधकार में स्थित संदूक के वर्णन से पता चलता है। इसीलिए भीत पार ध्वनि पास से आती है और इस ध्वनि से बचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह अनिवार्य है। इसके बाद की पंक्तियां हैं, और मेरे रे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन, सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई, इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलस्तर, खिरती है चूने भरी रेत, खिसकती है बपड़िया इस तरह खुद ब खुद, कोई बड़ा चेहरा बन जाता है स्वयं अपि, मुख बन जाता है दीवार पर नुकीली नाक और भव्य ललाट है दृढ़ हनु, कोई अनजानी अनपहचानी आकृति, कौन वह जो देता दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता है कौन मनु। मुक्तिबोध अतीत के किसी विशिष्ट प्रसंग को लाने के लिए जड़ और चेतन के संयोजन की इस प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हैं। एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन कविता में चित्रित इसकी प्रक्रिया देखें। पृथ्वी के पेट में घुसकर जब पृथ्वी के हृदय की गर्मी के द्वारा सब मिट्टी के ढेर ये चट्टान बन जाएंगे, तो उन चट्टानों की आंतरिक परतों की सतहों में चित्र उभर आएंगे। हमारे चेहरे के तन बदन के शरीर के अंतर की तस्वीरें उभर आएंगी संभवतः। मुक्तिबोध रचनावली भाग दो। गौरतलब है कि इस दृश्यमान लेकिन अज्ञात आकृति की पहचान करने के लिए काव्य नायक प्रश्न करता है, कौन मनु। इसी प्रश्न के सारे नाम विलास शर्मा ने इस आकृति को कामायनी के मनु का मुक्तिबोधकृत नया संस्करण मान लिया। उनका प्रतिवाद करते हुए नामोर सिंह ने इस प्रश्न को अस्मिता की खोज का एक रूप कहा है। हम केवल इतना कहेंगे कि मनु को मनुष्य का संक्षिप्त रूप मानना ही तर्कसंगत है, और समूची कविता में महज एक बार आए दो शब्दों के इस प्रश्न से इससे अधिक अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए कि इस आकृति के संघटक तत्वों में आदिकालीन मनुष्य के भी कुछ आशय और सरोकार शामिल हैं। दरअसल अंधेरे में किस आकृति में ब्रह्मा राक्षस एक बार फिर प्रकट हुआ है। परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व की परिणति ब्रह्मा राक्षस कविता में रूपांतर में न होकर विध्वंस में हुई थी। कवि ने इसी द्वंद्व का समाधान एक बार फिर इस बार अधिक बड़े फलक पर करने की कोशिश की। इसका परिणाम यह हुआ कि मुक्तबोध की सभी मूलभूत समस्याओं ने अपना कलात्मक विस्तार पाया और आधुनिक हिंदी साहित्य की विलक्षण कविता अंधेरे में की सृष्टि हुई। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व इस कविता में दूर तक नहीं चलता और परंपरा बहुत जल्द आंतरिक आधुनिकता में रूपांतरित हो जाती है। फिलहाल काव्य नायक अंतराल विवर के तम में लाल लाल मशालों की रोशनी में उस आकृति की जो पहचान करता है वह उल्लेखनीय है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था व निस्संभावना और निहित प्रभावों प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव व आत्मा की प्रतिमा। इन पंक्तियों में ज्ञान और कर्म की मूल समस्या सामने आई है। यह आकृति अथवा व्यक्ति ज्ञान और अभिव्यक्ति की अब तक न पाई गई एकता का प्रतीक बनकर आता है। इस कविता में अभिव्यक्ति को कर्म के उस विशिष्ट रूप की भूमिका मिली है जिसे शासन सत्ता हर कीमत पर दबाने की कोशिश करती है। इस रहस्यमय व्यक्ति के रूप में परस्पर से ज्ञान प्राप्त ज्ञान तो मौजूद है लेकिन अभिव्यक्ति के अभाव में वह मन और आत्मा को वेदना से भर देता है। ध्यान दें कि इस अंश में जो है तथा जो हो सकता है इन दोनों की अवस्थाओं में उस व्यक्ति को चित्रित किया गया है। किंतु वह फटे हुए वस्त्र क्यों पहने हैं, उसका स्वर्ण वर्ण मुख मैला क्यों, वक्ष पर इतना बड़ा घाव कैसे हो गया, उसने कारावास दुख झेला क्यों, उसकी इतनी भयानक स्थिति क्यों है, रोटी उसे कौन पहुंचाता है, कौन पानी देता है, फिर भी उसके मुख पर स्मित क्यों है, प्रचंड शक्तिमान क्यों दिखाई देता है। यह चित्र भारतीय परंपरा का है जो 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक साजिश का शिकार होकर दृष्टि से ओझल हो गई। खासतौर से 1857 की जीत के बाद अंग्रेजों ने भारतीय परंपरा के अग्रगामी तत्वों को कुचलकर मैकाले और विलियम जोन्स की योजना के अनुसार भारत में एक नए मध्यवर्ग का सृजन किया और उसे औपनिवेशिक और ब्राह्मणवादी मूल्यों के गठजोड़ की व्यवस्था प्रदान की। लेकिन कोई परंपरा मोहज़्ज़मन या विकृतीकरण का शिकार होने के चलते नहीं मर जाती। इतिहास में थोड़ी भी भूमिका शेष रहने पर वह सतह के अंदर दबी प्रतीक्षारत रहती है और अनुकूल परिस्थिति पाकर अपना कार्यभार पूरा करने के लिए लौट आती है। यही वजह है कि कविता में भारतीय परंपरा के प्रतीक चरित्र को रोटी पानी मिल रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि उसे पता है कि औपनिवेशिक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता का विद्रोह जो शीघ्र अवश्य संभावी है अपनी परंपरा की खोज में उस तक जरूर पहुंचेगा। सच्ची भारतीयता को निर्मित करने वाले इस परंपरा को खोकर हमने अपनी राष्ट्रीय पहचान भी खो दी है। इसी मायने में इस रहस्यमय व्यक्ति चरित्र को हमारे काव्य नायक की खोई हुई अस्मिता का प्रतीक मानना उचित है। शमशेर जब इस कविता को हमारा राष्ट्रीय कविता कहते हैं तो गहरे अर्थ में उनका आशय भी यही है। कविता में परंपरा का चित्रण बस इतना ही है, इसके आगे इसका आधुनिक रूप सामने आता है। यह रूप वास्तविक जगत में कर्म का आवाहन करता हुआ प्रकट होता है। काव्य नायक उसके पारंपरिक रंग रूप को तो पहचान लेता है लेकिन उसकी नई अंतर्वस्तु से परेशान भी होता है क्योंकि वह उसी औपनिवेशिक मूल व्यवस्था की पैदाइश है जिसके खिलाफ अपनी मुक्ति और सच्ची आधुनिकता की स्थापना के लिए उसे लड़ना है। अरे हाँ, साकल ही रह बसती है द्वार पर, कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है बुलाता है। आधी रात इतने अंधेरे में कौन आया मिलने, विमन प्रतीक्षातुर कोहरे में घिरा हुआ द्वितीय मुख व प्रेम भरा चेहरा, भोला भाला भाव, पहचानता हूँ बाहर जो खड़ा है या वही व्यक्ति है, जी हाँ, जो मुझे तिलस्मी खो में दिखा था। परंपरा से आधुनिकता तथा अतीत से वर्तमान तक की दूरी तय करने का साक्ष्य इस व्यक्ति की बाहरी जगत में उपस्थिति के रूप में मौजूद है। वह कमरे के अंदर नहीं उसके बाहर खड़ा दस्तक दे रहा है। वह काव्य नायक का आंतरिक सत्य यानी मेरी बात नहीं है बल्कि उसका ज्ञान देने वाला है। अंधेरा यहाँ भी है लेकिन आधी रात होने के कारण, जबकि पहले वह स्वभावतः था। इसी प्रकार कोहरे से पहले अर्धविराम के न होने से प्रतीक्षा का असमंजस कोहरे के लिए तर्क प्रदान कर रहा है। उसके चेहरे की चमक, उसका प्रेम और भोला भाला भाव सब मिलकर उसकी बदली हुई अवस्थिति तथा अर्थवत्ता की सूचना दे रहे हैं। इसके पूर्व रूप से वाकिफ का विनायक उसे उसी रूप में पहचानने की भूल करता है। आगे हम देखेंगे कि काव्यनायक से उसकी अंतःक्रिया भी वर्तमान के बदले हुए संदर्भों में ही होगी। रहस्यमय व्यक्ति से उसका आरंभिक साक्षात्कार अपने आंतरिक ऐतिहासिक सत्य से साक्षात्कार के रूप में होता है। वर्तमान के आधुनिक संदर्भ में आते ही उसका रहस्य गायब हो जाता है और अंतर जगत के कैदी की जगह वह जन क्रांति का प्रेरक बन जाता है। वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरी कगार तट पर, सूचनीय स्थिति में ही छोड़ देता मुझको, कहता है पार करो पर्वत संध के घवर रस्सी के पुल पर चलकर, दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से, बजने दो साकल। कविता के इस अंश से पर्याप्त स्पष्ट है कि वह व्यक्ति अपने युग के किन्हीं बड़े और खतरनाक कारभारों को स्वीकार करने का आह्वान बनकर आता है, जिसे अपनी मध्यवर्गीय सीमाओं के कारण वाचक स्वीकार नहीं कर पाता, वाचक के सामंत्र को ठुकरा भी नहीं पाता। नहीं नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो ही भले ही। आखिरकार अपनी दुविधा और अनिर्णय पर काबू पाकर जब वह दरवाजा खोलता है तो वहां उसे कोई नहीं मिलता। मुक्तिबोध की कविता में कई बार अंतरात्मा की आवाज की तरह पक्षी आते हैं जो कवि के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। इस बिंदु पर कविता में कोई रात का पक्षी आता है और काव्य नायक से कहता है, वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर, वह निकल गया है गांव में शहर में, उसको तू खोज अब, उसका तू शोध कर, वह तेरी पूर्णतम परम व्यक्ति, उसका तू शिष्य है। ब्रह्म राक्षस कविता के अंतिम पंक्तियों में व्यक्त कामना से इन पंक्तियों का साम्य उल्लेखनीय है। परंपरा के संघर्ष चेतना का प्रेरक प्रतीक वह व्यक्ति मध्यवर्ग के प्रतिनिधि के मन में गहरी हलचल पैदा करके जनसमुदाय के दूसरे तबकों के बीच चला गया है। अब यह निश्चित है कि काव्यनायक अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे सफलता कितनी मिलेगी यह तय नहीं। इसके बाद काव्यनायक को सपने फासिस्ट प्रशासन दिखाई पड़ता है। इसमें कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मार्शल, मंत्री, उद्योगपति, विद्वान और कुख्यात हत्यारे डोमाजे उस्ताद के साथ कई प्रकांड आलोचक, विचारक और जगमगाते कविगण भी दिखाई पड़ते हैं। इसी बीच प्रशासन में शामिल कुछ लोग उसे देख लेते हैं और शोर खड़ा होता है, मारो गोली दागोस साले को एकदम। सपना एकाएक टूट जाने पर उसे प्रतीत होता है गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती है मिलकर करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। काव्यनायक को इसके बाद आभास होता है कि सेना सड़कों पर उतर आई है और यह सब किसी जनक्रांति के दमन के लिए लगा हुआ मार्शल लॉ है, और गलियों में भाग निकलता है। कविता में टेक की तरह पंक्ति आती है, भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। इसी भाग दौड़ के बीच सभी गरीबों, वंचितों और उपेक्षितों के आश्रय स्थल बरगद की छाया में रहने वाला कोई सिर फिरा उसे दिखता है, जिसकी बुद्धि इस समय जागृत है और वह उद्बुद्ध बोधमय गीत गाता है। गीत के गद्यानुवाद की आरंभिक पंक्तियां हैं, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, उधर रम भरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी भी विचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के दागों को तमगों सपहना, अपने ही ख्यालों में निर्लात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। यह पागल भी अंधेरे में की एक गुत्थी है। नाम और इसे कविता की दो पंक्तियां, व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में, के आधार पर वही रहस्यमय व्यक्ति मान लेते हैं जो काव्यनायक का प्रतिरूप है। यथा उसकी गीत का प्रभाव उस पर यह पड़ता है, प्रत्यक्ष मैं खड़ा हो गया किसी छाया मूर्ति सा समक्ष स्वयं के। आशा यह है कि मैं अपने प्रतिरूप पागल के समक्ष स्वयं को खड़ा हो गया पाता है। रामलीला शर्मा इस तजवीज को झट मान लेते हैं, क्योंकि इससे मुक्तिबोध के काव्य को विक्षिप्त मस्तिष्क के दिन सिद्ध करना आसान होता है, लेकिन अगर कविता पर गौर करें तो पागल की पहचान कुछ दूसरी ही ठहरती है। उपरोक्त पंक्तियों को बाद की दो पंक्तियों के साथ देखें। व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में, पागल था दिन में, सिरफिरा विक्षिप्त मस्तिष्क। यहाँ दूसरी पंक्ति में आए हुए उसे पर यह बात निर्भर करती है कि यह बात किसके लिए कही जा रही है। नामवर सिंह मानकर चलते हैं कि उसे का विनायक के लिए आया है। इससे पहले दिया गया पागल का परिचय देखें। किंतु आज इस रात बात अजीब है, वही जो सिर्फ फिरा पागल कतई था, आज एकाएक वह जागृत बुद्धि है। तीनों रात के अंतर से जाहिर होता है कि उस रात पागल को ही अपना खोया व्यक्तित्व मिलता है, जिससे उसके मन बुद्धि की फांक भर जाती है। बात की पंक्तियों में छाया मूर्ति सा स्वयं के समक्ष खड़े होने की क्रिया भी पागल के गीत से पैदा हुई आत्मालोचन के प्रभाव को ही इंगित करती है, जैसे किसी ने दर्पण दिखा दिया हो। वह पागल गरीबों वंचितों की तरफ से मध्यवर्ग की मालमत अवश्य करता है, लेकिन वह पूर्वोक्त प्रेरक व्यक्ति कदापि नहीं है। पागल का गीत का विनायक की आत्मा को झकझोर देता है और उसका द्वंद तीखा हो जाता है। उसे लगता है कि अपने खोल में सिमटे हुए रहने की उसके वर्ग की प्रवृत्ति के कारण है। जनक्रांति के दमन के निमित्त यह मार्शल लॉ लगा है। मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लॉ वह, मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई यह घटना। अपने वर्ग की इस ऐतिहासिक असफलता के चलते का विनायक को अपने चारों ओर व्याप्त सुगंध में कोई छिपी वेदना, कोई गुप्त चिंता छटपटाटी हुई मिलती है। लेकिन शासक वर्ग का दबाव इतना प्रबल है कि वंचितों के आश्रय स्थल बरगद की एक पत्ते के कंधे पर गिरने से वह किसी संकेत की कल्पना करके डर जाता है और घबरा कर भाग खड़ा होता है। कविता के इस अंश में भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़ की बारम्बार आवृत्ति जनक्रांति और उसके दमन के दौर में मध्यवर्गीय पलायन वृत्ति का प्रदर्शन करती है। यहाँ निष्क्रिय संज्ञा का प्रयोग भी महत्वपूर्ण है। संज्ञाहीन अचेत स्थिति में पड़े किसी व्यक्ति या वर्ग को संकट का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन संज्ञावान का निष्क्रिय बने रहना निश्चय ही आपत्तिजनक है। आगे चलकर उसका सामना अपने जीवनानुभव से उपलब्ध सत्यों से होता है। चुमड़ियों के रूप में किसी प्राकृत गुहा यानी अंतर्मन के किसी कोने में परित्यक्त खड़े हुए थे, क्योंकि वे खतरनाक थे। हाय हाय, मैंने उन्हें गुहा वास से दिया, लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित, जनोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर दिया, खो में डाल दिया। वे खतरनाक थे, बच्चे भीख मांगते, खैर यह न समय है, जूझना ही तय है। काव्यनायक अपने विवेक निष्कर्षों का सामना होने पर जूझना ही तय है सोचने के बावजूद भटकता है और विषम स्थिति का सामना करते ही दम छोड़कर भाग खड़ा होता है। इस यात्रा में उसकी मुलाकात तिलक की प्रतिमा से होती है, जो उसके निकट आने पर हिलने लगती है और मानो की अतिशय चिंता के कारण उसका मस्तिष्क कोश फूट जाता है और नाक से खून बहने लगता है। वह तिलक को पिता कहते हुए आश्वासन देता है। इसी क्रम में आगे उसकी मुलाकात गांधी से होती है, जो सर्दी में बोरा ओढ़े कपकपा रहे हैं। वे से भावी पीढ़ी का प्रतीक एक शिशु देते हैं। शिशु के रोने पर काव्य नायक भयभीत होता है कि कहीं अगर किसी ने सुन लिया तो वे दोनों कहीं रह न सकेंगे। चुप होने के लिए पुचकारे जाने पर वह शिशु और अधिक क्रोध से चिख पड़ता है, जिस पर नायक टिप्पणी करता है, किंतु न जाने क्यों खुश बहुत हूँ, जिसको न मैं जीवन में कर पाया वह कर रहा है। यहाँ नायक की खुशी का कारण ध्यान देने योग्य है। भावी पीढ़ी को निर्भय होकर अपने स्फोटक क्षोभ का आवेग व्यक्त करते हुए देख वह न केवल खुश होता है, बल्कि इस प्रक्रिया में उसका अपना भय भी टूटता है। उसके कंधे पर से शिशु गायब हो जाता है और उसकी जगह पहले फूल का गुच्छा मिलता है, फिर वह एक राइफल में बदल जाता है। इस प्रकार भावी पीढ़ी के संदर्भ में गांधी जी की प्रासंगिकता स्थापित होती है। इसके तुरंत बाद अततायी सत्ता द्वारा एक कोमल स्वप्नदर्शी कलाकार की संदेह के कारण हत्या होती है। इससे प्रेरित होकर नायक नए दोस्तों की तलाश में निकलता है कि खुद भी गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तारी और टार्चर के दौरान उसे लगता है कि अंतरतत्वों का पुनर्प्रबंध और पुनर्व्यवस्था पुनर्गठन सा होता जा रहा है। रूपांतरण की यह प्रक्रिया चलती रहती है और रिहा होने के बाद वह फिर साथियों की तलाश करने का निश्चय करता है। इन साथियों के गुण विभिन्न फूलों की शक्ल में पहले से अंतर्मन के प्रतीक हो के जल और पाताल तल से संदेश भेजते रहे हैं। आशा यह है कि मन में उठने वाले विचार बाह्य परिवेश की ही देन होते हैं, बस जरूरत उनके वस्तुगत आधारों को ढूंढ निकालने की है, लेकिन ये गुण नाकाफी है। इसके बाद भविष्य के प्रतीक दूर क्षितिज पर उससे बिजली और अग्नि जो कर्म और ज्ञान के प्रतीक हैं के फूल और उन्हें समेटे हुए हाथ दिखाई पड़ते हैं। ये हाथ भविष्य के साथियों के भविष्य से प्रेरित होकर वर्तमान में कर्म की ओर उन्मुख होता है और जमीन पर पड़े चमकीले पत्थरों को चुनकर उनसे बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता है। यह जनजीवन में बिखरे सत्य को सूत्रबद्ध करके उन्हें वापस व्यवहार में लाने की प्रक्रिया है, लेकिन कर्म के अभाव में विज्ञान के फूल ठंडे पड़े रहते हैं। मेरे वे फूल हैं तेजस्क्रिय पर अतिशय शीतल, मुझको तो बेचैन बिजली की नीली ज्वलंत बाहों में बाहों को उलझा करती है उतनी ही प्रदीप्त लीला आकाश भर के साथ साथ उसके घूमना है मुझको। मेरे पास न रंग है बिजली का गौर की, भीमाकार हूँ मेघ में काला, परंतु मुझ में है गंभीर आवेश अथाह प्रेरणा स्रोत का संयम। गौर करें कि इन ठंडे फूलों को खिलाने वाला अपने को मेघ मानता है और वैसे प्रदीप्त लीला करना चाहता है जैसे आकाश में सचमुच का मेघ बिजली के साथ करता है। गालिब ने भी तस्वीर की कुछ ऐसी ही सूरत देखी थी। अब्र रोता है कि बज्मे तरब आमादा करो, बरग हस्ती है या फुर्सत कोई दम है हमको। यह कर्म का आवार है, ऊर्जा का अक्षर स्रोत जनता है जिससे उसे आवेश और संयम दोनों मिलता है। जरूरत हो तो केवल इस बात की कि वह जनता के साथ एकाकार हो जाए और उसकी राह में आने वाली सारी बाधाओं को नष्ट करने में अपना योगदान दे। वह उसका ठोस संकल्प करता है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि अंधेरे में का नायक एक बुद्धिजीवी है। उसकी प्रमुख समस्या है अभिव्यक्ति के खतरे कब है। उसके लिए कर्म का ठोस अर्थ है जनता के हित में सत्य को अभिव्यक्त करना और इस प्रक्रिया में विचारों पर बंदिश लगाने वाले गढ़ों और मठों को ध्वस्त कर देना, तभी उसका रूपांतरण क्रांतिकारी बुद्धिजीवी में हो सकेगा। कविता का नायक बार बार अपने भय को झटक कर संघर्ष का निश्चय करता है, लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा लगती है। इसकी वजह उसका अकेलापन और जनता से अलगाव है। सत्ता का चरित्र उसके सामने अनावृत है, लेकिन वह उसके खिलाफ खड़ा होने की शक्ति नहीं जुटा पाता। कविता में इस मुकाम पर पहुंचकर उसे अपने अकेलेपन का तीखा एहसास होता है। विचित्र अनुभव, जितना मैं लोगों की बातों को पार कर बढ़ता हूँ आगे, उतना ही पीछे मैं रहता हूँ अकेला पश्चातपद हूँ। पर एक रेला और पीछे से चला और अब मेरे साथ है, आश्चर्य अद्भुत। लोगों की मुट्ठियाँ बधी हैं, उंगलियाँ संधे में फूट रही किरणें लाल लाल, यह क्या मेरा है विक्षोभ मणियों को लिए वे, मेरे विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोत्साह, किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाले में अपने से दुकेला। मध्य वर्ग अपनी विशिष्टता के बोझ से ग्रस्त होकर शेष जनता से आगे निकलने के प्रयास में उससे अलग थलग होकर पीछे छूट जाता है, लेकिन जन समुदाय का साथ मिलते ही उसे उनके विक्षोभ के कारणों और विवेक निष्कर्षों का पता चलता है। तभी उसे यह भी एहसास होता है कि निष्कर्ष उसके भी यही है, लेकिन उनके अनुकूल कार्रवाई करने का साहस न जुटा पाने के कारण वह आगा पीछा करता रह जाता है। उसका अकेलापन अत्यंत विडम्बनात्मक ढंग से टूटता है। जब उसका मन एक अभिदृढ़ निश्चय करता ही है कि दूसरा मन प्रकट होकर आत्मसमर्पण कर देता है और वह दुकेला हो जाता है। अन्यत्र मुक्तिबोध ने इसी अवस्था को आत्मा की एकता में दुई है कहा है। यह कविता के बेहद परिचित द्वंद्वात्मक मनुस्थिति है। गालिब ने इसे ईमा मुझे रोके हैं तो खींचे हैं मुझे कुफ्र कहकर व्यक्त किया था, लेकिन मुक्तिबोध के मामले में आलोचकों ने इसे सिज़ोफ्रेनिया के सबूत के बतौर इस्तेमाल किया। आखिरकार हमारे काव्यनायक को क्षितिज पर बिजली के अग्नि में फूल खिलाने वाले साथी मिलते हैं। जन संघर्ष के दौर में जनता की निकटता बढ़ती है और जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता है, हमारे मध्यवर्गीय नायक के भय और पलायन को बारंबार व्यक्त करने वाली पंक्ति भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़ के बजाय टेक की तरह दूसरी पंक्ति की आवृत्ति होने लगती है। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, निकट आने की इस प्रक्रिया का आरंभ होता है। जब गलियों में भागते समय वाचक को कोई चुपचाप एक पर्चा दे देता है और बहुत ध्यान से पढ़ने पर उसे लगता है उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार व दबी हुई संवेदनाएं व अनुभव पीड़ाएं जगमगा रही हैं, यह सब क्या है। आगे वह इसका जवाब भी देता है, ये सब दृढ़ीभूत कर्मशिलाएं हैं जिनसे कि स्वप्नों की मूर्ति बनेगी सुस्मित शुक्र, जिसकी की किरणें ब्रह्मांड भर में नपेंगी सब कुछ। स्पष्ट है कि ये विचार और संवेदनाएं जब तक कि सिर्फ नायक के मस्तिष्क में पड़ी रहती हैं, अपने अभिव्यक्ति के लिए तरसती हैं, लेकिन जनमानस की वस्तु बनने के बाद उन्हें साकार करना भी संभव हो जाता है। इसके बाद कविता के अंतिम अंश में जनक्रांति का चित्रण है, जिसका सूत्र वाक्य है, कहीं आग लग गई कहीं गोली चल गई। क्रांतिकारी परिस्थिति में व्यक्तित्व के रूपांतरण का संदर्भ देखें। रेखांकित करना मुक्ति बहुत जरूरी समझते थे। कुछ बलवान जन सांवले मुक्के चढ़ा रहे लकड़ी के चक्के पर जबरन, लाल लाल लोहे की गोल गोल पट्टी, घनमार घनमार। उसी प्रकार आप आत्मा के चक्के पर चढ़ाया जा रहा संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत चलंत टायर। हथौड़े चलाने वाले ये बलवान जन निश्चय ही सर्वहारा वर्ग के सदस्य हैं, जो अपने साथ साथ मध्य वर्ग की आत्मा को भी संकल्प शक्ति प्रदान करते हैं। इसकी पुष्टि बाद की पंक्तियों से होती है, जब मध्यवर्गी का विनायक जिन कारणों से अपने युवकों का व्यक्तित्वांतरण होते देख रहा है, उनमें युगानुयुग से चली आ रही परंपरा के प्रतीक पिताओं तथा माओं के साथ आधुनिक युग के प्रतिनिधि के बतौर श्रमिक वर्ग भी शामिल है, जिनमें कि डूबे हैं युगानुयुग से पिताओं की चिंता का उद्विग्न रंग भी, विवेक पीड़ा की गहराई भी, चैन डूबा है जिसमें श्रमिक का संताप, माओं के आंसू वह जल पीकर मेरे युवकों में व्यक्तित्वांतर विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से करते हैं संगर। कविता के इस अंतिम अंश तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है कि नायक का भटकाव खत्म हुआ और उसे मंजिल मिल गई, लेकिन अभी उसमें एक पेंच और है जिसमें मुक्तिबोध की रचनात्मकता के मूल वृत्ति का पता चलता है। यह प्रवृत्ति है प्रेम और संघर्ष के प्रतीकों का एक दूसरे में घुल मिलकर प्रकट होना। एकाएक फिर स्वप्न भंग होता है और नायक को लगता है कि उसके मस्तिष्क हृदय के छेदों के दुखों में प्रदीप्त ज्योति का रस बस गया है। यहाँ बिजली की बाहों में बाहें डालकर की गई प्रदीप्त लीला का स्मरण अनायास हो आता है। नायक उन सपनों का आशय खोजता है और उसके मन में अर्थों की वेदना घिराती है। मानो कि कल रात किसी अनपेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो मनोहर मुख से जीवन भर के लिए, मानो कि उस अतिशय मृदु के निबाहों में आकर कस लिया था मुझको, उस स्वप्न स्पर्श की चुम्बन घटना की याद आ रही है, याद आ रही है। अज्ञात प्रणयनी कौन थी, कौन थी? कमरे में सुबह की धूप आ गई है, गैलरी में फैला सुनाला रविछोर, क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी? हा यह वेदना स्नेह की गहरी जाग गई क्यों कर। इस अज्ञात प्रणयनी को पहचानने और पाने की इस कथा के बाद कविता में इसी कोई अनुभूज नहीं मिलती। अंतिम दृश्य से ठीक पहले आई इस प्रसंग को आमतौर पर मुक्तिबोध की काव्य संवेदना के अनुकूल नहीं पाया गया। उपरोक्त पंक्तियों के बाद वातावरण को चित्रित करता हुआ एक स्टंजा आता है, जिसमें एक पंक्ति है, प्रत्येक अर्थ की छाया में दूसरा आशय झिलमिला रहा सा। कुमार विकल अपनी कविता रंग खतरे में है में कलाकार के उस रंग का जिक्र करते हैं जिससे वह दूसरे सभी रंगों की पहचान करता है। सत्य का ज्ञान असल में वस्तुओं की एक दूसरे से संलग्नता का ज्ञान है। एक भावना दूसरी भावना से और एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई है। चीजों को उनकी समग्रता में समझने का संघर्ष न कर पाने वाले या तो एकांगी सोच के शिकार होते हैं या फिर रहस्यवादी पद्धति में शरण लेकर अंश में संपूर्ण का दर्शन करते हैं। मुक्तिबोध जब प्रत्येक अर्थ में दूसरे आशयों को भी पाते हैं, तब वे चीजों की आपसी संलग्नता का ही संकेत कर रहे होते हैं। पिछली रात के सपनों का आशय खोजने में अर्थों की वेदना घिरने की चर्चा कभी पहले ही कर चुका है। आइए देखें कि उन सपनों का इस वेदना से कविता में क्या संबंध है। पिछली रात के स्वप्न जनक्रांति और उसके दौरान होने वाले व्यक्तित्वांतरण के थे। सुबह उठने पर होने वाले प्रणय के स्मरण में एक बात ध्यान देने की है कि यह प्रेम ऐसा था मानो जीवन भर के लिए लिया गया हो। यह आशा निश्चय ही आगामी जीवन से है, क्योंकि अगर जीवन भर का मतलब अगला पिछला सब कुछ है तो पिछली रात किसी नई अनुभूति का प्रश्न ही नहीं उठता था। आगामी जीवन के लिए एक बड़ा बदलाव सर्वहारा वर्ग के साथ उसकी एकजुटता के रूप में पिछली रात घटित भी हुआ है। अब सवाल यह है कि मुक्तिबोध सीधे उसी अनुभूत की बात न करके उसे प्रेम के अनुभूत के रूप में क्यों व्यक्त करते हैं। भारतीय समाज और कविता की परंपरा में प्रेम की भूमिका को बार बार महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित करना मुक्तिबोध जरूरी समझते थे। कबीर जैसी मीरा और गालिब का अन्यथा करण देखने के बावजूद उन्हें यकीन था कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें सही संदर्भों में ग्रहण करेंगे। कविता में क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी, इस प्रश्न के माध्यम से हुई व्यक्त हुई वेदना और महत्वाकांक्षा जन समुदाय के बीच उसी भव्य व्यक्ति को देखकर उसे पुकारने के लिए खुलने वाले मुंह और बुलाने के लिए उठने वाली बांह में विस्तार पाती है। हालांकि यह जनसाधारण में खो जाता है, उसे संपर्क नहीं हो पाता, लेकिन कविता में निराशा का रत्ती भर भी आभास नहीं है। काव्य नायक के रवैये में यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसकी वजह उसका अपना रूपांतरण है। आम जनता से अपने को विशिष्ट मानने वाला मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी जनता के जुझारू परंपरा से रोमानी रिश्ता बनाता है, लेकिन इसी प्रक्रिया में रूपांतरित होने के बाद वह नायक पूजा छोड़कर अंधेरे में के नायक की तरह साधारण लोगों में स्थित उस व्यक्त शक्ति को पहचानता है। वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था, वह मेरे पास कभी आया ही नहीं था, तिलश्मी खो में देखा था एक बार आखिरी बार ही, पर जगत की गलियों में घूमता है प्रतिपल व फटे हाल रू। तड़ित तरंगीय वही गतिमयता, अत्यंत उद्विग्न ज्ञान तनाव व सकर्मक प्रेम की व अतिशयता, वही फटे हाल रू। कविता के अंतर में आकर जनता के उद्देश्य के साथ एकाकार हो जाने के बाद काव्य नायक को यह एहसास होता है कि जनता की शक्ति और विद्रोह परंपरा के स्मृति उसके अंतर्मन यानी तिलस्मी खो में जरूर थी, लेकिन उसके वर्तमान जनस्वरूप से वह अपने मध्यवर्गीय चरित्र के कारण दूर ही रहता था। जनशक्ति का प्रतीक व पुरुष उसका द्वार खटखटाने नहीं आता था, बल्कि अपनी मुक्ति की छटपटाहट और उसके लिए रूपांतरण की वेदना सहने की अनिवार्यता के कारण उसे इसका आभास होता था। गति ज्ञान और सकर्मक प्रेम का मिला जुला रूप ऊर्जा का अक्षय स्रोत यह हमारी जनता ही है जो गलियों में फटे हाल घूमती है। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ जाने कहाँ वह है, इसीलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ हरेक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि प्रत्येक चरित्र व हरेक आत्मा का इतिहास, हरेक देश व राजनीति परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श विवेक प्रक्रिया क्रियागत प्रणति, खोजता हूँ पठार पहाड़ समंदर जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। परम अभिव्यक्ति को प्राप्त करने की काव्य नायक की आकांक्षा कविता में आरंभ से अंत तक व्यक्त हुई है। बीच में उसने अभिव्यक्ति के खतरे उठाने की बात की थी। अभिव्यक्ति का ठोस संदर्भ कविता में वर्तमान आदताई व्यवस्था के खिलाफ जारी जनसंघर्ष में शामिल होकर उसे बदलने का था, ताकि एक बेहतर मानवीय व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। अभिव्यक्ति का संघर्ष वर्तमान के ठोस संदर्भों से जुड़ा हुआ है, जबकि परम अभिव्यक्ति मूर्त रूप में अनखोजी निज समृद्धि का परम उत्कर्ष बनकर आती है। असल में दोनों के बीच कार्यनीति और रणनीति का अंतर है। अभिव्यक्ति वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का तात्कालिक कार्यभार है, जबकि परम अभिव्यक्ति वह दूरगामी लक्ष्य जिसमें मानव जीवन साम्य की आदिम आकांक्षा की पूर्ति सभ्यता के सारी उपलब्धियों के साथ उसकी अपनी चरितार्थता अपने चरम प्रतिफलन को प्राप्त कर सकेगा। काव्य नायक ने जब से मध्यवर्गीय विश्व दृष्टिकोण छोड़कर सर्वहारा का दृष्टिकोण अपनाया, तब से उसे इन दोनों लक्ष्यों की एकता और उसकी वाहक जनता की भूमिका का ज्ञान हुआ। इसीलिए कविता के अंत में उसने भविष्य के चरम उद्देश्यों की खोज जन समुदाय के वर्तमान सदस्यों और उसकी संघर्षशील परंपराओं खासतौर पर मानवीय आदर्शों और उसकी क्रियागत प्रणति के संदर्भ में की। अंत में एक बात ध्यान देने की और है कि कविता के आरंभ में परम अभिव्यक्ति को अब तक न पाई गई कहा गया है, जबकि अंतिम पंक्तियों में खोई हुई बताया गया है। यह फर्क मानव सभ्यता के विकास के रहस्य को समझने में कामनायों को मिलने वाली कामयाबी की वजह से पड़ा है। पहले वह चरम मानवीय लक्ष्यों को जनता के वर्तमान संघर्ष से अलग किसी रहस्यमय उपलब्धि के रूप में पाना चाहता था। इस बात से अनभिज्ञ था कि अपने आदिम रूप में ही सही लेकिन साम्य और सामंजस्य कभी उसकी धरोहर थे। जो विकास के एक निश्चित चरण में वर्ग लिंग विभेद जैसे कुछ कारणों के पैदा हो जाने से तिरोहित हो गए थे। जन समुदाय की स्मृति परंपरा और ज्ञान के साथ एकाकार हो जाने के बाद उसने अभी समझा कि वर्तमान की कार्रवाइयों में ही भविष्य के बीच छुपे हैं और जनता ही इतिहास का निर्माण करती है। कविता के अंत में खोने की बात मानो आरंभ में पूछे गए सवाल कौन मनु का ही सकारात्मक जवाब है।